डॉक्टर क्रेग कीनर मैथ्यू व्याख्यान 18 मैथ्यू 26 से 27 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 18 है, मैथ्यू 26-27। जैसे ही हम मैथ्यू के सुसमाचार के समापन पर आते हैं, हम मैथ्यू के जुनून और फिर पुनरुत्थान कथा पर कुछ संक्षेप में नजर डालने जा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने आपको यह दिखाने के लिए शुरुआत में कुछ चीजों पर अधिक समय बिताया कि हम यह कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक ऐतिहासिक प्रश्न, क्या यीशु को अपनी मृत्यु के बारे में पहले से पता था? खैर, उसे निश्चित रूप से अपनी मृत्यु के बारे में पहले से पता होना था। उसने इसे उकसाया। आपके पास कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं, ठीक है, यीशु को अपनी मृत्यु के बारे में पहले से पता नहीं था क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे भविष्यवक्ता बनना होगा। खैर, अपने लिए मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ने चीजों को पहले से ही जान लिया था। लेकिन उस प्रश्न के अलावा भी, मेरा मतलब है, आप मंदिर में जाकर मेजों को पलट नहीं सकते हैं और पुजारी अभिजात वर्ग के अधिकार को सार्वजनिक रूप से चुनौती नहीं दे सकते हैं और निष्पादित होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप एक सेना खड़ी करते तो शायद आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। यह हो सकता है कि आप बहुत जल्दी शहर से भाग जाएं, लेकिन यीशु ने ऐसा भी नहीं किया। यीशु ने स्पष्ट रूप से अपनी मृत्यु को पहले से ही जान लिया था। उसने स्पष्ट रूप से अपनी मृत्यु की साजिश रची। जिन घटनाओं के बारे में हम यीशु के जुनून के बारे में पढ़ते हैं, वे भी विचाराधीन अवधि में फिट बैठती हैं। हमने पहले जोशुआ बेन हननयाह के बारे में उल्लेख किया था। उन्होंने मंदिर के खिलाफ बोला। सदूकियों ने उसे पकड़ लिया और राज्यपाल को सौंप दिया। पूछताछ करने पर उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। जोसेफस का कहना है कि उसे तब तक कोड़े मारे गए जब तक उसकी हड्डियां दिखाई नहीं दी। और वहां समानता मूल रूप से टूट जाती है क्योंकि यीशु के विपरीत उनका कोई अनुयायी नहीं था, तो वह उस तरह से खतरनाक नहीं था। साथ ही यीशु के विपरीत उसे पागल माना जाता था, और इसलिए जब तक उसकी हड्डियां दिखाई नहीं दी तब तक उसे कोड़े मारे गए। रोमन गवर्नर ने उसे रिहा कर दिया। लेकिन जिस तरह से इस कथा में चीजें की गईं, उसी तरह चीजें सामान्य तौर पर तब की जाती थीं। रोम सामान्य परिस्थितियों में मुकदमा चलाने के लिए लोगों की तलाश नहीं करता था। उन्होंने बस उन लोगों पर मुकदमा चलाया जो उनके सामने लाए गए थे, विशेषकर स्थानीय अभिजात वर्ग द्वारा जिन पर स्थानीय अधिकारियों पर आरोप लगाए गए थे। जैसा कि हमारे पास जुनून कथा है, कई विद्वानों ने तर्क दिया है कि जुनून कथा मार्क की तुलना में बहुत पहले है, लेकिन जुनून कथा जैसा कि हमारे पास है, मार्क में अनुक्रम और पॉल में अनुक्रम, हालांकि यह पॉल में बहुत संक्षिप्त है, एक से मेल खाता है। एक और यहूदी और रोमन दोनों उत्तरदायित्वों का विचार पॉल में भी है। ऐसे संकेत हैं कि इसकी जड़ें आरंभिक जेरूसलम चर्च से चली आ रही हैं। मेरा मतलब है, अधिकांश सुसमाचार कथाओं में आपके पास ऐसे लोग हैं जिनका नाम उनके पिता के नाम या किसी और चीज के नाम पर रखा गया है जो आम था। किसी का नामकरण उनके संरक्षक नाम से किया जाता है। लेकिन जुनून की कहानी में हमारे पास अक्सर लोगों के नाम उस स्थान के आधार पर होते हैं जहां से वे आए थे। साइरीन से साइमन, मगडाला से मैरी इत्यादि। यह उस स्थान पर सबसे अधिक प्रासंगिक होगा जहां आपके पास अलग अलग स्थानों से आए लोग थे, जो कि जेरूसलम चर्च में सच था। कथा की ओर ही आगे बढ़े। मैथ्यू 26 के पहले कुछ छंदों में अधिकारी यीशु की मृत्यु की साजिश रचते हैं। जब हम परीक्षण के बारे में बात करेंगे तो हम उस बारे में बात करने के लिए वापस आएंगे। लेकिन हम यहाँ देखने जा रहे हैं विशेष रूप से यहाँ अन्य छंदों पर यीशु का मूल्य कितना है। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि कुछ अन्य लोगों ने इसका उपयोग किया है, जैसा कि मैंने बताया। उन्होंने हमेशा यह उल्लेख नहीं किया कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो इसे लेकर आया हूँ, लेकिन यह ठीक है। दरअसल मैं शायद अकेला नहीं हूँ जो इसके साथ आया हूँ। मुझे बस इस बात की खुशी है कि भगवान का वचन बाहर आ गया। वैसे भी जब हम शब्द को उजागर करते हैं तो हम यही करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास इसका स्वामित्व नहीं है। यदि यह सही है, यदि यह गलत है, तो यह हमारा है। लेकिन यीशु का मूल्य कितना है? हमारे यहाँ महिला और पुरुष शिष्यों के बीच विरोधाभास है। आपके पास यह महिला है जो आती है और यीशु पर अपना सब कुछ लुटा देती है। उसके पास यह इत्र की शीशी है। अब ये बहुत महंगी शीशी थी और इसमें बहुत महंगा परफ्यूम था। वास्तव में कई लोग तर्क देते हैं कि यह एक पारिवारिक विरासत थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, इसीलिए ये इतना महंगा था। हम वास्तव में इस तथ्य को नहीं जानते हैं, लेकिन साथ ही मरहम भी बहुत महंगा था। यह संभवतः भारत से आयातित एक प्रकार का जटामांस था। कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया है कि इस शीशी की प्रकृति, इस कुप्पी की प्रकृति मलहम निकालने के लिए आपको इसे तोड़ना होगा, तो यह सब एक ही बार में सामने आ जाएगा। फिर मैं नहीं जानता कि यह सच है कि आप इसमें से कुछ को फिर से उजागर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह इसे यीशु पर लुटाना चाहती थी और वह उससे अपने प्यार का इजहार बड़े ही शानदार तरीके से करती है। यीशु उसके बारे में आगे कहते हैं कि जहां भी कहानी सुनाई जाएगी, कहानी उसके बारे में बताई जाएगी। अब हम केवल उसका नाम जानते हैं क्योंकि उसका नाम जॉन के सुसमाचार में हमारे लिए संरक्षित है कि यह मरियम, मार्था और लाजर की बहन है। ऐसा लगता है कि ल्यूक एक अलग कहानी बता रहा है और कहानियों में कुछ ओवरलैप है, लेकिन किसी भी मामले में मार्क में वह आती है और यीशु को उसके दफनाने के लिए पहले से ही उसका अभिषेक करती है, क्योंकि जब तक महिलाएं यीशु का अभिषेक करने के लिए कब्र पर पहुंचती हैं, तब तक सप्त के बाद उसे दफनाने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। उसे अब दफनाया नहीं गया है, लेकिन यीशु कहते हैं कि यह कहानी दुनिया भर में इस महिला के बारे में बताई जाएगी, जहां भी यीशु के बारे में खुशखबरी का प्रचार किया जाएगा, और यह सच है। लेकिन उस तरह का वाक्यांश प्राचीन साहित्य में भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता था, जैसे ओविड कहते हैं, मैंने यह अद्भुत पुस्तक बनाई है और मुझे विश्वास है कि मेरा नाम हमेशा के लिए संरक्षित किया जाएगा। खैर, मैं जानता हूँ कि ओविड कौन है और क्लासिकिस्ट जानते हैं कि ओविड कौन है और कुछ अन्य लोग जानते हैं कि ओविड कौन है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ओविड कौन है। वास्तव में ओविड की तुलना में इस महिला के बारे में अधिक लोगों ने सुना है, क्योंकि उसने यीशु के लिए क्या किया। यीशु चाहता था कि उसका भी सम्मान किया जाए, लेकिन फिर हम पुरुष शिष्यों को देखते हैं। मैथ्यू का कहना है कि पुरुष शिष्यों ने शिकायत की। उन्होंने कहा कि ये पैसा बेचा जा सकता था, इसे गरीबों को दिया जा सकता था। खैर, गरीबों की देखभाल के बारे में उनके पास सही विचार है, लेकिन गलत परिस्थितियां हैं, क्योंकि यीशु को हर चीज पर प्राथमिकता मिलती है और उसने जो कुछ भी अर्पित किया वह उसके प्रति समर्पण की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, और इसलिए हमने उनकी प्रतिक्रिया को उसकी प्रतिक्रिया के साथ विरोधाभासी पाया है। लेकिन अंततः श्लोक 14 से 16 में हमें यहूदा की प्रतिक्रिया के साथ विरोधाभास मिलता है। जुडास की प्रतिक्रिया एक अलग तरह की थी। उस तरह के लोगों की ओर से इस तरह की प्रतिक्रिया जो यीशु का अनुसरण केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वे उसके लिए क्या प्राप्त कर सकते हैं। यहूदा ने मूलतः यीशु को चांदी के 30 टुकड़ों में बेच दिया। वह निर्गमन में एक दास की कीमत थी। बेशक गुलामों की कीमत एक अवधि से दूसरे अवधि में भिन्न होती थी। यूसुफ के दिनों में यह 20 शेकेल था। मूसा के समय में यह 30 शेकेल था। नहमायाह के दिनों में मुझे लगता है कि शायद यह 50 या 100 शेकेल था। कीमत बढ़ गई, लेकिन किसी भी मामले में यह वही है जिसे लोग पवित्र शास्त्र से जानते थे। यह एक गुलाम की कीमत थी और यहूदा ने उसके लिए यीशु को बेच दिया। मैथ्यू इसे पवित्र शास्त्र के संदर्भ से जोड़ता है और भेड़ों के तितर बितर होने के बारे में भी बात करता है। लेकिन फिर हम यीशु की मृत्यु के अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। यीशु हमारे लिए कितना मूल्यवान है? हमें वहां जो देखना चाहिए उसके लिए महिला मॉडल बन जाती है। लेकिन हम श्लोक 17 से 30 तक यीशु की मृत्यु के अर्थ पर चलते हैं। हमारे पास यह विश्वास करने का अच्छा कारण है कि यह एक आधारशिला परंपरा है। दूसरे शब्दों में यह बहुत पहले से चला आ रहा है। फिर यह नहीं कह रहा कि अन्य चीजें ऐसा नहीं करती, लेकिन हमारे पास इसके समर्थन में अच्छा डेटा है। इसके लिए कई प्रमाण मौजूद हैं। यह संभवतः लिखित गॉस्पेल से भी पहले प्रमाणित है। यह एक कुरिन्थियों अध्याय 11 में प्रमाणित है, जहां पॉल मूल रूप से वही जानकारी देता है, कुछ अलग क्रम, लेकिन यीशु की मृत्यु की व्याख्या के बारे में लगभग वही जानकारी जो उसने दी थी। पॉल का कहना है कि मुझे यही मिला है, मैंने इसे आप तक पहुंचा दिया है। जब उन शब्दों का एक साथ उपयोग किया जाता था तो वे अक्सर सावधानीपूर्वक मौखिक परंपरा को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाने का सुझाव देते थे। मार्क में आप जो पाते हैं और पॉल में जो पाते हैं, दोनों के पीछे आंशिक रूप से पुनर्प्राप्त करने योग्य अरामी परंपरा है। और फसह के बारे में ऐसे संकेत मिलते हैं जो बहुत पहले से हैं। जोआचिम जेरेमियास ने बाद में अपनी कुछ सामग्रियों पर बड़े पैमाने पर बहस की। जोएल मार्कस ने हाल ही में ड्यूक की ओर से यह तर्क दिया है। और मुझे लगता है कि सबूत बहुत मजबूत हैं कि आपके पास फसह के लिए बहुत सारे संकेत हैं जो बाद के कुछ गैर यहूदी ईसाइयों में विभिन्न स्थानों पर खो गए होंगे, लेकिन निश्चित रूप से शुरुआती यरूशलेम चर्च में समझे गए होंगे और यीशु द्वारा समझे गए होंगे। जाहिर है उन्हें किसने पेशकश की। लोग आम तौर पर दावतों में बैठते थे, और अगर मैं इसे आपके लिए प्रदर्शित कर सकूं, तो शायद यह टेबल मेरा वजन उठाने के लिए काफी बड़ी हो जाएगी। आइए इस बिंदु पर मैं इसे या उसके जैसा कुछ प्रदर्शित करने का प्रयास करूं यदि मैं इसे बिना कुछ काटे काटे कर सकता हूं। वे बाईं कोहनी पर झुकेंगे। इस तरह उनके सामने मौजूद मेज से चीजें लेने के लिए उनका दाहिना हाथ खाली था, और वे एक सोफे पर 3 या कभी कभी 4 लोगों को लिटा देते थे। और आम तौर पर एक अमीर घर में, विशेष रूप से एक अमीर रोमन घर में, उनके पास एक ट्राइक्लिनियम होगा जहां आपके पास 3 सोफे होंगे, और इन सोफों पर फिर से 3 या 4 लोग बैठ सकेंगे। तो आप इनमें से एक कमरे में 9 से 12 लोगों को बहुत आराम से पा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने उन्हें प्राप्त किया है, पैर मेज से दूर की ओर होंगे ताकि आप हमेशा मेज के सामने तक पहुंच सकें। लेकिन जब आप इन लोगों को लेटे हुए होंगे तो किसी के पैर किसी और के चेहरे पर नहीं टिकेंगे। मेरे बगल में बैठने वाला अगला व्यक्ति, यदि वे मेरे दाहिनी ओर झुक रहे होते तो यहाँ थोड़ा और नीचे होते ताकि उनके पैर मेरे पैरों से अधिक नीचे हों, और यदि वे अपना सिर पीछे झुकाते तो वे इसे मेरी छाती पर झुका देते। यूहन्ना 13:23 जहां प्रिय शिष्य ने अपना सिर यीशु की छाती पर पीछे झुका दिया। वह यीशु के दाहिनी ओर बैठा था। यहूदा शायद बाईं ओर बैठा था या बाईं ओर झुक रहा था, क्योंकि यीशु आसानी से उसे छूट देने में सक्षम थे। और यही कारण है कि जब आप ल्यूक अध्याय 7 में पढ़ते हैं, जहां यह दूसरी महिला यीशु का अभिषेक करती है और कहती है कि वह अपने बालों से यीशु के पैर पोंछ रही है, तो साइमन के साथ बात खत्म करने के बाद यीशु कहानी में एक निश्चित बिंदु पर उसकी ओर मुड़ते हैं। खैर, साइमन स्पष्ट रूप से बगल के सोफे पर है और यीशु से बात करने में सक्षम है। यीशु सम्मान की स्थिति में है, लेकिन उसे महिला से बात करने के लिए मुड़ना पड़ता है, क्योंकि वह उसके पैरों के पास होती है और उसके पैर मेज से दूर होते हैं। खैर, लोग दावतों में आराम करने लगे। यहूदी लोग फसह को भोज के रूप में मानते थे। वे भोजन के समय बिल्कुल भी पीछे नहीं झुकते थे। वे अक्सर वैसे ही बैठते जैसे मैं अभी बैठता हूँ। यदि वे किसी रब्बी के अधीन पढ़ रहे होते थे, तो वे अक्सर उस व्यक्ति के पैरों के पास धूल में बैठ जाते थे। मिशना 1:1 या उस मामले के लिए अधिनियम 22:3 या ल्यूक अध्याय 10:38-42 में मैरी क्या करती है। लेकिन फसह के भोज में, जिस परंपरा के बारे में हम जानते हैं, उसके अनुसार व्यक्ति मेज से लगभग एक हाथ की दूरी पर प्याला पकड़ता था। लोगों ने भोजन के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि का प्रस्ताव दिया है, चाहे वह ग्रीक एसोसिएशन की बैठकें हों, फरीसी कबीरा हों या सब्बात किद्दुश हों। लेकिन मुझे लगता है कि सभी सबूत वास्तव में फसह के भोजन की ओर इशारा करते हैं। इस भोजन में यीशु जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मांस और रक्त बहाया जाता है, वह बलिदान संबंधी भाषा है। तो यीशु एक बलिदान है। उसका खून बहुतों के लिए बहाया जाता है। यशाया अध्याय 53 किसी और चीज का संकेत हो सकता है, लेकिन यशाया 53 यीशु के मंत्रालय और अन्य चीजों के बड़े संदर्भ में फिट बैठता है जो हमने उसके बारे में सीखा है। वह कहता है कि रोटी उसका शरीर है, और यह संभवतः फसह की व्याख्या को दर्शाता है, जहां फसह पर आप कहते हैं यह कष्ट की रोटी है जो हमारे पूर्वजों ने खाई थी। अब बेशक ईसाइयों के बीच भी इस पर अलग अलग राय है, और इसलिए मैं आपको अपना दृष्टिकोण बताने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप इस पर कायम रहने के लिए बाध्य नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या यह उसका शाब्दिक शरीर और खून है? मुझे नहीं लगता कि कोई यह कहता है कि यह इस अर्थ में शाब्दिक है कि आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे और आपको लाल कणिकाएं और इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। लेकिन हमें शरीर और रक्त को कैसे समझना चाहिए? प्राचीन काल में कुछ लोगों ने स्पष्ट रूप से इसे बहुत शाब्दिक रूप से लिया था। ईसाइयों पर अनाचार का आरोप लगाया गया, क्योंकि वे कह रहे थे, भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ। उन पर नरभक्षण का भी आरोप लगाया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने भगवान का शरीर खाया और खून पिया। लेकिन अगर हम फसह के संदर्भ को याद करें, तो मेजबान, जो आम तौर पर घर का मुखिया होता है, फसह के संदर्भ में भोजन के कुछ तत्वों की व्याख्या करेगा। और मेजबान ने घोषणा की कि यह दोहक की रोटी है जो हमारे पूर्वजों ने मिस्र से बाहर आने पर खाई थी। क्या यह वस्तुतः वही रोटी थी जो उनके पूर्वजों ने मिस्र देश से बाहर आने पर खाई थी? यदि ऐसा है, तो रोटी थोड़ी बासी होगी, लगभग 1300 वर्ष पुरानी और पहले से ही किसी और द्वारा चबाई जा चुकी होगी। एक चुटकुला है जो मैंने वर्षों पहले सुना था, जहां किसी ने शिकायत की थी कि वे हर दिन बचा हुआ खाना खाते हैं और उन्हें कभी भी मूल भोजन नहीं मिलता है। लेकिन किसी भी मामले में फसह के संदर्भ में यह बहुत मायने रखता है। लेकिन जब प्रभु भोज को एक अलग सांस्कृतिक सेटिंग में ले जाया गया तो उसके साथ एक अलग तरीके से व्यवहार किया गया। और यही वह चीज है जिसके बारे में हमें हमेशा जागरूक रहना होगा। मेरा मतलब है, हमें नई सेटिंग्स के लिए संदर्भ बनाना होगा, लेकिन अगर हम बहुत सावधान नहीं हैं, तो लोग कभी कभी अपने स्वयं के संदर्भों के कारण गलत समझेंगे, और कभी कभी अगर हम भी हैं। कुरिन्थ में जहां प्रभु भोज मनाया जा रहा था, पॉल ने उन्हें निर्देश दिया था। पॉल ने स्पष्ट रूप से प्रभु भोज के माध्यम से उनका नेतृत्व किया था। उन्होंने उन्हें इसके बारे में सिखाया। लेकिन कोरिंथ में सामान्य तौर पर ग्रीको रोमन दुनिया में लोग एक निश्चित तरीके से भोज करने के आदि थे, और आपके पास भोज के मेजबान होंगे जो अपने स्वयं के सामाजिक वर्ग के साथियों को आमंत्रित करेंगे, या वे थोड़े कम सामाजिक वर्ग के लोगों को आमंत्रित करेंगे जो उनके ग्राहक होंगे, जो उन पर सामाजिक रूप से निर्भर होंगे। और लोगों को अक्सर उनके सामाजिक पद, उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार बैठाया जाता था। और हमने इसके बारे में विभिन्न प्राचीन लेखकों, विशेषकर रोमन लेखकों में पढ़ा, जो कोरिंथ के लिए प्रासंगिक होगा। यह ग्रीस में था, लेकिन यह एक रोमन उपनिवेश था जिसमें रोमन संस्कृति की बहुतायत थी। लोगों को भोज में रैंक के अनुसार बैठाया जाएगा, और जो लोग रैंक के अनुसार बहुत ऊंचे स्थान पर नहीं बैठे थे, याद रखें कि यीशु ने एक अलग संदर्भ में इसके बारे में कैसे बात की थी, आप सबसे नीचे का स्थान लेते हैं, और यदि वे आपको ऊपर आमंत्रित करते हैं तो ठीक है और अच्छा है, लेकिन ऊंचे स्थान पर न बैठें और नीचे जाने को न कहें। भोज संदर्भों में लोग सामाजिक स्थिति को लेकर बहुत संवेदनशील थे, तो इनमें से कुछ लोग बाहर गए और शिकायत की कि किस तरह उन्हें पेट भरने और उस संरक्षक का सम्मान करने के लिए मजबूर किया गया जिसने उन्हें यह भोजन दिया और उन्हें अन्य सुविधाएं दीं। पॉल को कुरिन्थियों को समझाना पड़ा कि वे मसीह के शरीर को सही ढंग से नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि मसीह का शरीर सिर्फ रोटी और शराब, मसीह के शरीर और खून में नहीं है, बल्कि मसीह का शरीर भी हम हैं, पॉल ने एक कुरिन्थियों में भी कहा। और यदि हम एक दूसरे के साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं तो हम यीशु के शरीर और रक्त को शर्मसार कर रहे हैं, और हमारी सामाजिक स्थिति के आधार पर एक दूसरे का मूल्यांकन करना प्रभु भोज के पूरे अर्थ को खोना है। प्रभु भोज में यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए मरने जा रहा हूं। अब हमने देखा है कि चीजें क्रूस की ओर बढ़ रही हैं। हमने देखा है कि पूरे सुसमाचार में चीजें इस जुनूनी कथा की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन यहीं पर यीशु विशेष रूप से बताते हैं कि उनकी मृत्यु किस बारे में होने वाली है। उन्होंने इसे अध्याय 20 के श्लोक 28 में भी कहा, जहां उन्होंने कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया है। यीशु हमारे पापों के लिए मरने आए। वह हमारे पापों का प्रायश्चित करने आया था। और यह कुछ ऐसा था जिसे यहूदी लोगों को समझने में सक्षम होना चाहिए था, क्योंकि मैकाबीन युग के बाद कई यहूदी लोगों ने कहा, ठीक है, शहीदों का खून धर्मी लोगों की पीड़ा इसराइल से भगवान के क्रोध को दूर कर देती है। और कभी कभी वे इसे लोगों के पापों का प्रायश्चित करते हुए शहादत के रूप में बोलते थे, तो उन्हें इसे कुछ हद तक समझने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन यीशु इसे बिल्कुल नए स्तर पर ले जा रहे थे। यीशु परमेश्वर के क्रोध को मानवता से दूर कर रहे थे। वह हमारे सभी पापों का प्रायश्चित कर रहा था। यीशु हमारे लिए यह करने आए, लेकिन हमने उनके लिए क्या किया? यीशु के शिष्यों ने उसे निराश कर दिया। श्लोक 31 से 46 में हम यहां यीशु के दर्द और गतसमनी के बगीचे में उसकी पीड़ा के बारे में पढ़ते हैं। और उसने चेलों से प्रार्थना करने, जागते रहने और प्रार्थना करने को कहा। लेकिन वह इसके बाद दो बार वापस आते हैं और उन्हें सोते हुए पाते हैं, यहां तक कि अपने सबसे करीबी शिष्यों को भी। यीशु प्रार्थना करते हैं, हे पिता, यह कटोरा मुझसे ले लो। और निःसंदेह यह क्रूस के प्याले को संदर्भित करता है। यह भी बहुत अधिक प्रमाणित है क्योंकि इब्रानियों अध्याय 5 में यह यीशु को मृत्यु से बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने की बात करता है। यह शर्मिंदगी की कसौटी पर भी खरा उतरता है। संभवतः प्रारंभिक चर्च ने यीशु की इच्छा और पिता की इच्छा के बीच अंतर को स्वीकार करते हुए यीशु के यह कहने का विचार नहीं बनाया होगा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होगी। लेकिन हम पूछते हैं, अच्छा, यदि शिष्य सो रहे थे तो उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला? यह एक अच्छा सवाल है और मैं निश्चित रूप से इसका उत्तर नहीं जानता। कुछ लोग इसका उत्तर यह देते हैं कि वे नींद के अंदर बाहर हो रहे थे और उन्होंने इसकी कुछ आवाज सुनी। मुझे अधिक संभावना यह लगती है कि वहां कोई मौजूद था जिससे वे बाद में यह सीख सकते थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब से यीशु मृतकों में से जी उठे, उसके बाद वे 40 दिनों तक उनके साथ थे। उनके लिए इन चीजों के बारे में जानने का समय था। लेकिन यह बहुत शर्मनाक है कि शिष्य जागते रहे। यीशु ने अपने लिए उनमें से बहुत कुछ नहीं मांगा था, लेकिन अब उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे दुख की घड़ी में उसके साथ जागते रहें। यहूदी आम तौर पर फसह के दिन देर तक जागते थे और भगवान के मुक्ति के शक्तिशाली कार्यों के बारे में बात करते थे, परंतु इस एक फसह के दिन वे उसके पास सो गए। और यह कुछ कुछ वैसा ही लगता है जैसे शिष्य इस पूरी कथा में कार्य करते हैं। वे उस पर सो जाते हैं, वे उसे छोड़कर भाग गए। उनके स्टार शिष्य ने उन्हें मना कर दिया, उनके एक अन्य शिष्य ने उन्हें धोखा देकर मार डाला है। वे क्रूस का अनुसरण नहीं करते। उस समय के शिष्य आज हम में से कुछ शिष्यों के समान हैं, लेकिन यीशु ने उन्हें कुछ और बना दिया, ठीक वैसे ही जैसे यीशु आज हमें कुछ और बनाते हैं। लेकिन यह याद रखना कि हमने उसे तब निराश किया जब उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, इससे हमें यह भी पता चलता है कि उसका प्यार कितना गहरा है और वह हमारे लिए अपनी जान दे रहा है। हम छंद 47 से 56 में विश्वासघात के बारे में भी पढ़ते हैं। यहूदा ने भक्ति के बाहरी कार्य के साथ यीशु को धोखा दिया। नीतिवचन कहता है, मित्र के घाव वफादार होते हैं परंतु शत्रु के चुंबन कपटपूर्ण होते हैं। यहूदा धोखे से चुंबन करता था। और वैसे यहां उन उदाहरणों में से एक है जहां संदर्भ किसी शब्द का अर्थ निर्धारित करता है, क्योंकि फिलो का मतलब चुंबन हो सकता है या इसका मतलब प्यार हो सकता है। यहां जाहिर तौर पर इसका मतलब सिर्फ चुंबन है। प्राचीन दुनिया में चुंबन आम बात थी। आप परिवार के किसी सदस्य का स्वागत चुंबन से करेंगे। आम तौर पर यह होठों पर हल्का चुंबन था। अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग हैं। यह मेरी संस्कृति में स्वच्छता की भावना को ठेस पहुंचाता है। लेकिन वे होठों पर चुंबन के साथ एक दूसरे का स्वागत करेंगे। ये होठों पर हल्का सा चुंबन था। यह भावुक नहीं था। यह प्रेमी के चुंबन से बहुत अलग था। लेकिन शिक्षकों का स्वागत चुंबन से किया जा सकता था। शिक्षक छात्रों का स्वागत चुंबन से कर सकते हैं, उनके माथे पर चुंबन कर सकते हैं या ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। यहूदा के लिए यीशु को चूमना अभिवादन का कार्य था, लेकिन यह विश्वासघात का कार्य भी था। ये गार्ड ऊपर आएंगे। वे संभवतः लेवी पुलिस के सदस्य थे। कुछ लोग जॉन के गॉस्पेल से बताते हैं, ठीक है, यहां इस्तेमाल की गई भाषा रोमन सैन्य इकाइयों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। दुर्भाग्य से यदि आप यहूदी साहित्य पढ़ते हैं तो यह अन्य स्थानों से उधार ली गई यहूदी सैन्य इकाइयों की भाषा भी है। इसलिए चूंकि मुख्य पुजारी लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, संभवतः यह लेवी मंदिर के रक्षक हैं जो मुख्य पुजारी की कमान के अधीन हैं। उनके पास अपनी मशालें हैं। और फिर भी मेरा मतलब है, अपनी मशालों के साथ भी वे जानते हैं कि यदि वे समूह के पास बहुत तेजी से बहुत अचानक पहुंचेंगे तो लोग भाग सकते हैं। वे अपना मुख्य लक्ष्य यीशु खो सकते हैं। और भले ही उनके पास पूर्णिमा हो और भले ही उनके पास मशाले हो, यह वास्तव में उनकी मदद करेगा यदि यहूदा, जो पहले से ही ज्ञात और भरोसेमंद है, समूह से संपर्क कर सकता है और उनके लिए यीशु की पहचान कर सकता है, ताकि वे देख सकें कि यह कौन सा आंकड़ा है, क्योंकि आखिरकार बाहर अंधेरा है। लेकिन बाकी शिष्य दिलचस्प तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। जॉन के सुसमाचार में पीटर के रूप में पहचाने गए शिष्यों में से एक ने महायाजक के नौकर का कान काट दिया। संभवतः वह कान को निशाना नहीं बना रहा था। संभवत महायाजक का नौकर मलचस, जैसा कि जॉन ने उसका नाम मलचस रखा है, शांत नहीं रहता। वह हिलता है और उसकी जगह उसका कान कट जाता है। ल्यूक, जो चमत्कारों के बारे में बहुत बात करना पसंद करता है, उल्लेख करता है कि कैसे यीशु ने कान को ठीक किया। मैथ्यू इसे निर्दिष्ट नहीं करता है। मैथ्यू कुछ अन्य मुद्दों को निर्दिष्ट करता है। प्रत्येक लेखक हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है, जो सहायक है, क्योंकि इसीलिए हमारे पास केवल एक ही सुसमाचार नहीं है। हम ये अनेक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। तो वह कान काट देता है और जीसस कहते हैं, अपनी तलवार उठाओ। यह वह नहीं है जिसके बारे में यह बात है। हम सांसारिक तरीकों से राजा की लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हैं। क्या तुम नहीं समझते कि यदि मैं अपने पिता से कहूं तो वह मुझे स्वर्गदूतों की 12 पलटने दे देंगे। खैर, एक सेना में लगभग 6,000 सैनिक थे। इस समय रोम की कोई सेना भी यहूदिया में तैनात नहीं थी। कैसरिया में उनके कई दल तैनात थे। उनका एक दल टेंपल माउंट पर किले एंटोनियो में तैनात था, लेकिन इस भूमि में कहीं भी उनके पास पूर्ण सैन्य दल नहीं था। उनके पास सीरिया में एक था, लेकिन फिलिस्तीन के रोमन प्रांत में नहीं, यहूदिया या गलील में नहीं। और इसलिए यीशु कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे स्वर्गदूतों की 12 सेनाएं दी होंगी, मूल रूप से मेरे प्रत्येक शिष्य के लिए एक सेना। यह यरूशलेम को मिटा देने के लिए पर्याप्त होता। वह संभवतः अधिक शक्ति थी, भले ही ये रोम के पास की किसी भी निकटवर्ती सेना की तुलना में केवल मनुष्य ही क्यों न हो। लेकिन यीशु ने कहा कि यह उद्देश्य नहीं है। यीशु इस बिंदु पर आए थे ताकि धर्मग्रंथ पूरा हो सके और अपना मिशन पूरा कर सके। और पीटर, जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था, भले ही परिस्थितियां स्पष्ट रूप से उसके विरुद्ध थीं, मेरा मतलब है उनकी संख्या स्पष्ट रूप से कम थी। पतरस इतना बहादुर था कि वह लड़ने को तैयार था, लेकिन अगर वह लड़ भी नहीं सका तो उसने यीशु को त्याग दिया। और अन्य शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे बाद के लेखकों ने बनाया होगा, क्योंकि इसे शर्मनाक माना गया था। यदि शिष्य वफादार नहीं थे तो यह एक शिक्षक के लिए बहुत शर्मनाक था। किसी जनरल के लिए यह शर्मनाक माना जाता था कि उसके सैनिक उसे छोड़ दें। यीशु के अपने शिष्यों ने उसे त्याग दिया और उसे उस पीड़ा से गुजरना पड़ा जो उसके सामने थी, पूरी तरह से अकेले। और फिर भी, जैसा कि जॉन का सुसमाचार कहता है, पूरी तरह से अकेला नहीं, क्योंकि पिता उसके साथ होंगे। लेकिन अक्सर हम ऐसे ही होते हैं। हम राज्य की लड़ाई दुनिया के तरीके से लड़ना चाहते हैं या बिल्कुल नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब भगवान के अलावा कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। और जब ऐसा होता है तो हमें वास्तव में विश्वास सीखना होगा। श्लोक 57-68 में हम धार्मिक नेताओं बनाम यीशु के इस विषय पर पहुंचते हैं। खैर, कुछ लोगों ने विरोध किया है कि यहाँ की महासभा मिशनरी कानून का उल्लंघन करती है और इसलिए यह विवरण प्रशंसनीय नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि मिशनाह बाद में है। मिशनाह फरीसी धर्म से आए रब्बियों की परंपराओं से लिखा गया है। वे सदूकियों से नहीं आए थे। ये बाद में कानून के फरीसी आदर्शीकरण थे। हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन सदूकियों, मुख्य पुजारियों को वास्तव में कानून के फरीसी आदर्शीकरण की परवाह नहीं थी। और निःसंदेह मिशनाह वर्ष 220 में लिखा गया है, लगभग 220 ईपू में, जबकि नए नियम में यीशु के बारे में हमारे पास जो कुछ है वह पहली शताब्दी में लिखा गया है। जोसिफस से चीजें कैसे की गईं, इसके बारे में हम जो जानते हैं उससे भी यह अच्छी तरह मेल खाता है। इसलिए पहली सदी के हमारे सभी साक्ष्य बाद में मिशना में जो मिले उससे भिन्न दिशा की ओर इशारा करते हैं। रब्बीनिक साहित्य स्वयं कहता है कि पुरोहित अभिजात लोग हमेशा और अक्सर उन नियमों का पालन नहीं करते थे जिन्हें फरीसियों ने आदर्श माना था। साथ ही यह कोई आधिकारिक परीक्षण नहीं है। यह एक प्रारंभिक जांच है जिसमें सूर्योदय के समय एक परीक्षण की झलक मिलती है। जब वे इकट्ठा होते हैं तो वे कुछ अधिक आधिकारिक चीजों के लिए एकत्रित होते हैं। सूचना लीक हो जाती है, जैसे यह कैसे पता चल सकता है? खैर, लीक बहुत आम थे। आपके पास प्राचीन साहित्य में हर जगह रोमन सीनेट के बंद सत्रों से लीक हैं। आपके पास प्राचीन साहित्य में महासभा, यहूदी सीनेट से लीक हैं। महासभा के एक बंद सत्र से कुछ लोगों और महासभा के कुछ नेताओं ने जोसेफस के लिए परेशानी पैदा करने के लिए कुछ लोगों को भेजा। जोसेफस को इसके बारे में पता चला क्योंकि उसके कुछ दोस्तों ने उसे यह जानकारी लीक कर दी थी। प्राचीन काल में रहस्य बनाए रखना बहुत कठिन था, इसलिए लीक बहुत बार होते रहे। और साथ ही लोगों में से एक ने, चाहे वह इस परीक्षण में उपस्थित था या नहीं, अपने दोस्तों से, अन्य स्नेहदृष्टों से सुना होगा कि परीक्षण में क्या हुआ था। और वह अरिंथिया का यूसुफ था जो यीशु का शिष्य बन गया। तो स्पष्ट रूप से यदि यूसुफ को इसके बारे में पता है तो यह बात बाकी विश्वासियों तक वापस पहुंच जाएगी। और इन सब के अलावा वहां कोई था जो मौजूद था, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वह मौजूद था, जो बाद में शिष्यों को इसके बारे में बता सकता था, और वह स्वयं यीशु थे, क्योंकि आखिरकार सुसमाचार का गवाह एक मत है। और किसी चीज के बहुप्रमाणित होने की बात करें तो नए नियम में यीशु के पुनरुत्थान से अधिक बहुप्रमाणित कुछ भी नहीं है। लेकिन किसी भी मामले में हम जानते हैं कि यीशु ने मंदिर को साफ किया था। लगभग सभी विद्वान इससे सहमत हैं। वस्तुतः सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि यीशु को रोमनों द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, आप मंदिर की सफाई से लेकर बिंदुओं को जोड़ते हैं जो पुरोहित अभिजात वर्ग को नाराज करेगा, शायद पीलातुस के शहर में आने से पहले ही, और फिर रोमनों द्वारा सूली पर चढ़ाए जाने की घटना। यह संभवतः सुझाव देता है कि चीजें इस तरह से की गईं, जिस तरह से वे सामान्य रूप से प्राचीन काल में की जाती थीं, अर्थात स्थानीय नगरपालिका अभिजात वर्ग ने यीशु को रोमनों को सौंप दिया था। यहां वे कानून हैं जो तोड़े गए थे, यदि मिशना सटीक है। और मुझे नहीं लगता कि मिशना यह दर्शाता है कि मूल महासभा के साथ वास्तव में चीजें किस तरह से की गई थीं। लेकिन मुझे लगता है कि यह हमें दिखाता है कि फरीसियों ने कैसे सोचा था कि उन्हें ऐसा करना चाहिए था। वास्तव में यह उस तरीके से मेल खाता है जिस तरह से प्राचीन काल में बहुत से लोग सोचते थे कि रोमन विचारों और अन्य विचारों के संदर्भ में चीजें की जानी चाहिए थीं। आपको पवित्र दिन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। पवित्र दिनों में फांसी दी जा सकती है, लेकिन आपको पवित्र दिन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। लेकिन जो किया जाना चाहिए उसकी अधिक व्यापक समझ यह है कि आपको रात में सुनवाई नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपको महायाजक के घर में मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। वह प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। साथ ही आपके पास पूर्व सूचना की कमी नहीं होनी चाहिए। शब्द भेजे जाने चाहिए थे। संभवतः महासभा के कई सदस्य एकत्रित नहीं हो सके, विशेषकर मेरा मतलब है यह रात के दौरान है, यह सूर्यास्त के बाद है। तुम्हें पता है लोग फसह खा रहे हैं और वे फसह का जश्न मना रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत से लोग नहीं दिखेंगे। सबसे अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना वे लोग होंगे जो महायाजक के समर्थक थे, जो महायाजक के कहे अनुसार काम करना पसंद करते थे। फिर तुम्हारे पास झूठे गवाह हैं। इससे यह संकेत मिल सकता है कि वहां कुछ फरीसी थे, क्योंकि फरीसी गवाहों से पूछताछ करने में बहुत सावधानी बरतते थे। लेकिन यहां हमारे पास प्रोटोकॉल का एक और उल्लंघन है। क्योंकि पूंजीगत मुकदमे में यदि गवाह झूठे पाए जाते हैं तो गवाहों को फांसी दी जाती है, और यह टोरा के अनुसार है। यह रोमन कानून और अन्य मामलों के अनुसार भी है। झूठे गवाहों का क्या हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। दरअसल उनके गवाह के बदनाम होने के बाद भी मुकदमा चलता रहा। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके पास झूठे गवाह हैं, मुकदमा बंद कर देना चाहिए था। इस मुकदमे में, जो कि हम भ्रष्ट नेतृत्व के बारे में जानते हैं, एक बार फिर से फिट बैठता है। मृत सागर स्क्रॉल पुरोहित अभिजात वर्ग को भ्रष्ट बताते हैं। कुमरान समुदाय में धार्मिकता के शिक्षक डेडसी स्क्रॉल्स का कहना है कि उन्हें स्वयं सताया गया था और उन्हें अपने समय के महायाजक से भागना पड़ा था। और पीढ़ियों के बाद डेडसी स्क्रॉल्स को पुरोहित अभिजात वर्ग कुछ भी अच्छा नहीं लगा। रब्बी साहित्य फरीसी परंपरा का उपयोग करते हुए पुरोहित अभिजात वर्ग को भ्रष्ट बताते हुए उसकी निंदा करता है। जोसेफस इसके बारे में बात करता है, लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वह महायाजकों में से एक के बारे में बात करता है। इस अवधि में पुराने नियम के विपरीत महायाजक का उपयोग कभी कभी बहुवचन में किया जाता था, क्योंकि इसका प्रयोग महायाजक परिवारों के सभी सदस्यों के लिए किया जा सकता था। इसीलिए इसका उपयोग इस तरह से किया गया है न्यू टेस्टामेंट और जोसेफस दोनों में। लेकिन महायाजकों में से एक ने अपने साथी महायाजकों में से एक की हत्या करने के लिए बाद के रोमन गवर्नर से रिश्वत स्वीकार की। इस प्रकार की चीजें चल रही थीं जिनके बारे में रिपोर्ट किया गया था। और महासभा की एकता के संदर्भ में, महासभा में हर कोई हमेशा साथ नहीं रहता था। एक बिंदु पर एक पीढ़ी के बाद महासभा में अलग अलग गुट एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। तो इस काल की बातों से हमें पता चलता है कि बहुत अधिक भ्रष्टाचार था, बहुत अधिक फूट थी, वगैरह वगैरह। इसलिए उन्होंने यीशु को यह अन्यायपूर्ण सुनवाई दी। और यहां यीशु मसीहाय रहस्य को उजागर करते हैं। क्या आप मसीह धन्य के पुत्र हैं? महायाजक ने उससे पूछा। खैर, जाहिरा तौर पर यह बात फैल गई है कि यीशु यही होने का दावा करते हैं। और यीशु कहते हैं, हाँ, यह वैसा ही है जैसा तुम कहते हो। और तुम मनुष्य के पुत्र को शक्ति के साथ आते और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ देखोगे। अब यहाँ वह भजन 110 पद 1, प्रभु जो प्रभु के दाहिने हाथ पर बैठा है, को दानियल अध्याय 7 पद 13 और 14 मनुष्य के पुत्र जो आएगा और राज्य करेगा के साथ मिश्रित करता है। वैसे ये दोनों ही राज करने की तस्वीरें हैं। और यह मात्र एक सांसारिक मसीहा की अपेक्षाओं से परे हैं। उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो एक श्रेष्ठ मसीहा या स्वर्गीय मसीहा की उम्मीद कर रहे थे। और मूल रूप से यीशु यही दावा करते हैं। खैर, जहां तक महायाजक का सवाल है, यह ईशनिंदा है। यीशु ने शायद ईश्वरीय नाम का उच्चारण नहीं किया होगा। बेशक हम इसे ग्रीक में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि उसने वास्तव में किस शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन याद रखें, ईशनिंदा का मतलब केवल तकनीकी रूप से वही नहीं था जो बाद में मिशना सैनहेदरिन में फरीसी परंपरा में इसका मतलब था। जरूरी नहीं कि इसका मतलब ईश्वरीय नाम की निंदा करना हो, इसका मतलब ईश्वर के प्रति किसी भी तरह का अनादर हो सकता है। परंतु महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ डाले। यह शोक का एक संकेत था जिसका उपयोग विशेष रूप से उस शोक के लिए भी किया जाता था। जब आपने ईशनिंदा सुनी तो क्या होगा? उच्च पुरोहितों के वस्त्र काफी महंगे थे। संभवतः वह अक्सर ऐसा नहीं करता था, लेकिन वह अपने महायाजकीय वस्त्र को फाड़ देता है और कहता है, हमने स्वयं इसे ईशनिंदा के रूप में सुना है। आप सब क्या कहते हैं? आम तौर पर महासभा को किस तरह से जवाब देना चाहिए था? कम से कम परंपरा के अनुसार हम इस तथ्य को नहीं जानते हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार 71 सदस्य थे। शायद वे सभी इस अवसर पर उपस्थित नहीं थे। 71 शायद औसत ही था। रब्बी परंपरा 71 कहती है क्योंकि टाई तोड़ने के लिए आपके पास एक अतिरिक्त व्यक्ति होना चाहिए जो स्वयं महायाजक हो सकता है। लेकिन आमतौर पर सबसे छोटा पहले उत्तर देगा और फिर सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे छोटा सबसे बड़े से बहुत आसानी से प्रभावित हो सकता है। लेकिन किसी भी मामले में वहां के लोगों के बीच इस बात पर आम सहमति है कि यीशु ने ईशनिंदा की है। खैर, बाइबल के कानून के अनुसार आप ईशनिंदा के लिए किसी को फांसी दे सकते हैं। तुम उन्हें पत्थर मार मार कर मार डालोगे। लेकिन पत्थरबाजी एक लिंचिंग होगी और यह सैनहेड्रिन के लिए उचित नहीं होगा, खासकर शहर में रोमन गवर्नर के साथ। हालांकि कभी कभी चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती थीं, जैसा कि मैंने बाद में बताया, महासभा में लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे थे, इसलिए उन्हें एक चार्ज की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें एक मिल गया है। महायाजक एक चतुर व्यक्ति था। वैसे महायाजक कैफा होता। हमने हन्ना और कैफा दोनों के बारे में पढ़ा। अन्ना शायद अभी भी उच्च पुरोहित परिवार के सदस्य हैं, इसलिए दोनों को इस अवधि में उच्च पुजारी कहा जा सकता है। हन्ना कैफा का ससुर था और उसके पास अभी भी बहुत शक्ति थी। उनके 5 बेटों और दामाद ने उनके बाद महायाजक का पद संभाला, इसलिए जाहिर तौर पर उनका अभी भी बहुत प्रभाव था, भले ही रोमन गवर्नर ही महायाजक की नियुक्ति करता था। जोसेफ कैफा 18 से 36 वर्षों तक महायाजक थे, जो पहली शताब्दी में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले महायाजक थे। इसका मतलब है कि उसने शायद रोमनों को बहुत खुश रखा। उसने पिलातुस को बहुत प्रसन्न रखा। पिलातुस जितने समय वहां रहा, वह अधिकांश समय वहीं रहा। लेकिन कैफा इस समूह का हिस्सा था जिसके बारे में हम अन्य यहूदी स्रोतों में सुनते हैं, जहां वे भ्रष्ट थे। वे अपने क्लबों का उपयोग लोगों और इस तरह की चीजों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए जाने जाते थे। तो महायाजक कहते हैं, हमने यह स्वयं उनके मुंह से सुना है, लेकिन वह बहुत चतुर व्यक्ति थे, राजनीतिक रूप से बहुत चतुर व्यक्ति थे। यदि यीशु परमप्रधान का पुत्र है तो आप बहस कर सकते हैं कि यह ईशनिंदा है या नहीं, लेकिन एक बात निश्चित हो सकती है, वह मसीहा होने का दावा कर रहा था और इसलिए वह एक राजा होने का दावा कर रहा था, और रोमन मानकों के अनुसार राजा होने का दावा करना सम्राट की महिमा के खिलाफ उच्च राजद्रोह था। अब यदि सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम राजा बन सकते हो तो मैं तुम्हें ग्राहक राजा बनने दूंगा, यह एक बात है, लेकिन आप राजा बनने के लिए स्वेच्छा से काम नहीं करते हैं, और इसलिए अब उनके पास एक आरोप है जिसके आधार पर वे उसे पीलातुस को सौंप सकते हैं, और वे गवाह हैं जिन्होंने स्वयं यह सुना है। पीलातुस के बारे में कथा से पहले हम विश्वासघात की दो प्रतिक्रियाओं के साथ समाप्त होते हैं, पीटर की प्रतिक्रिया और यहूदा की प्रतिक्रिया। यीशु ने पतरस के विश्वासघात की भविष्यवाणी की थी। मुर्गे के बार बार बांग देने से पहले पतरस यीशु को धोखा देगा। अब जब मुर्गा बांग देता है तो जब मैं उन क्षेत्रों में रहता हूँ जहाँ मुर्गे होते हैं तो मुझे हल्की नींद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वे रात के समय बहुत अधिक बांग देते हैं, और ऐसे कई समय हैं जब वे विशेष रूप से मुर्गे की बांग से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब लोग मुर्गे की बांग के बारे में बात करते थे तो वे विशेष रूप से सूर्योदय के बारे में बात करते थे, क्योंकि तभी अधिकांश लोग इससे जागते थे। वे पर्याप्त नींद ले चुके थे, मुर्गे की बांग से उनकी नींद खुल गई। चाहे वह सूर्योदय का जिक्र हो या कुछ और, रात खत्म होने से पहले पतरस ने यीशु को नकार दिया था। उसने यीशु को धोखा दिया था। वह इसे पहचान लेता है और बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसने दबाव में आकर धोखा दिया। उसे डर था कि वह मरने वाला है। वह महायाजक के आंगन में चला गया था, जो बहुत बहादुरी का काम है ना? बहादुर या मूर्ख, वह महायाजक के आंगन में चला गया। बाहरी प्रांगण एक ऐसा स्थान था जहां कुछ अवसरों पर मेहमानों का स्वागत किया जा सकता था, परंतु यहां कुछ लेवी रक्षक और संभवतः घर के नौकर इकट्ठे हुए थे। और यह महिला कहती है, मैंने तुम्हें देखा है। मेरा मतलब है, महायाजक का घर यरूशलेम के ऊपरी शहर में था। यह मंदिर के बिल्कुल नजदीक था। वह संभवतः अन्य अवसरों पर भी मंदिर में आई थी, और उसने कहा, मैंने तुम्हें देखा है। आप नाजरेत के यीशु के साथ थे, और साथ ही उसे एक समस्या भी है, क्योंकि गैलीलियों ने गुटुरल का उच्चारण उस तरह नहीं किया जिस तरह यहूदी करते थे। उनके उच्चारण ने भी उन्हें दूर करने में मदद की। इसलिए पतरस ने यीशु का इनकार किया, और उसके जीवन को बचाने के लिए कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह सार्थक था, लेकिन यीशु ने पहले ही चेतावनी दी थी, यदि तुम मुझे दूसरों के सामने कबूल करोगे तो मैं तुम्हें अपने पिता के सामने कबूल करूंगा। यदि तुम दूसरों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। यीशु ने पतरस की प्रशंसा की थी, क्योंकि उसने यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार किया था। यहाँ तो वह उसे जानने से भी इनकार करता है, यहाँ तक कि शपथ लेकर भी इनकार करता है। तो पीटर बाहर चला जाता है। उसने यीशु को अस्वीकार करके उसके साथ विश्वासघात किया है, और वह पश्चाताप से रोता है। लेकिन फिर हमारे पास यहूदा है, जिसने यीशु को भी धोखा दिया है। और यहूदा के पास खेद व्यक्त करने का एक अलग तरीका है। अपने विश्वासघात के प्रति उसकी एक अलग प्रतिक्रिया होती है, और वह खुद को फांसी पर लटका लेता है। आत्महत्या, रोमन लोग कुछ परिस्थितियों में आत्महत्या को सम्मानजनक मानते थे। प्रारंभिक ईसाई परंपरा में हमारे पास ऐसा नहीं है। प्रारंभिक ईसाई परंपरा में ऑगस्टीन और अन्य लोगों का मानना था कि ईश्वर ने जीवन दिया है, भगवान प्राण ले लेता है। हमें खुद को नहीं मारना चाहिए। लेकिन आत्महत्या के कुछ प्रकार ऐसे भी थे जिन्हें अपमानजनक माना जाता था, चाहे कुछ भी हो। आम तौर पर फांसी को आत्महत्या का एक अपमानजनक रूप माना जाता था, किसी की तलवार पर गिरने के विपरीत, जैसा कि रोमनों ने किया था, और कुछ यहूदी लोगों ने स्पष्ट रूप से मसाड़ा और अन्य जगहों पर किया था। यह स्पष्ट रूप से अपमानजनक मौत है। यह शायद अहितोपेल को याद दिलाता है, जो डेविड का सलाहकार था, और उसने उसे धोखा दिया, और जब उसे एहसास हुआ कि चीजें उसके अनुसार नहीं होने वाली हैं, तो उसने खुद को फांसी लगा ली। विश्वासघात पर दो प्रतिक्रियाएं। पश्चाताप प्रकट करने के दो तरीके, एक सकारात्मक तरीका और एक नकारात्मक तरीका। यदि हमें पश्चाताप करना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे पतरस के तरीके से करें, न कि यहूदा के तरीके से। लेकिन निर्दोष खून का विषय इस श्रृंखला पर हावी है। सौंपने की भाषा है। यह आपके पास जॉन के सुसमाचार में भी है। जॉन के सुसमाचार में यीशु स्वयं को मृत्यु के हवाले करने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही आपने यहूदा को यीशु को सौंप दिया है। समय के साथ वह उसे महायाजकों को सौंप देता है। महायाजकों ने उसे पिलातुस को सौंप दिया। पिलातुस ने उसे यहां उनकी इच्छा, लोगों की इच्छा को सौंप दिया, लेकिन मुख्य पुजारियों द्वारा प्रेरित किया गया। और अंततः यीशु ने अपना जीवन मृत्यु को सौंप दिया। बेगुनाहों का खून भी जंजीर पर हावी है। यहूदा कहता है कि मैंने निर्दोषों के खून के साथ विश्वासघात किया है। पुजारी कहते हैं, हमें उससे क्या, यह तो आप स्वयं ही देख लीजिए। पिलातुस कहना चाहता है कि वह खून का दोषी नहीं है। वह अपने हाथ धोता है, जो अपराध बोध को अस्वीकार करने का एक तरीका है, और कहता है, इसे स्वयं देखो। हर कोई दोष मढ़ने की कोशिश करता है। आज कभी कभी लोग अपराध बोध के बारे में बहस करते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत अपराध हो या सामाजिक अपराध। खैर, यह दोनों है। मेरा मतलब है, व्यवस्थाविवरण अध्याय 21 में सोचें। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसकी खेत में हत्या कर दी गई हो। खैर, यदि आप हत्यारे को ढूंढ लेते हैं तो हत्यारा दोषी है। लेकिन अगर आप हत्यारे को नहीं ढूंढ पाते हैं तो स्थानीय समुदाय को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और यदि यह दो समान दूरी वाले समुदायों के बीच है तो दोनों इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। यहां हमारे पास निर्दोष खून है, जो अपराध, व्यक्तियों और कॉरपोरेट अपराध की श्रृंखला पर हावी है। खैर, यहूदा पैसे फेंक देता है और इसका उपयोग अजनबियों को दफनाने के लिए एक खेत खरीदने के लिए किया जाता है। और ध्यान दें कि महायाजक क्या कहते हैं। खैर, हम इसका उपयोग किसी पवित्र चीज के लिए नहीं कर सकते। आप अपवित्र रक्त के साथ एक मंदिर में खुद को फांसी पर लटका लेते हैं, धन एक मंदिर को अपवित्र कर देगा। इसलिए वह यह पैसा वहीं फेंक रहा है। वे कहते हैं कि हम इसका उपयोग किसी पवित्र चीज के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरकार यह ब्लड मनी है। वे जानते हैं कि यह खून का पैसा है, और जब उनके हाथों पर खून लगा होता है तो वे अनुष्ठान की शुद्धता के बारे में चिंतित होते हैं। जॉन के गॉस्पेल में भी कुछ ऐसा ही है, जहां समय को थोड़ा अलग परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। और 18:28 में वे पिलातुस के प्रेटोरियम में आते हैं। वह हेरोदेस महान के पुराने महल का उपयोग कर रहा था, परंतु वे भीतर न जाएंगे, ऐसा न हो कि वे अपने आप को अशुद्ध कर लें और फसह खाने न पाएं। परंतु यहां एक निर्दोष व्यक्ति है, और केवल एक निर्दोष व्यक्ति नहीं, परमेश्वर का पुत्र, और वे उसे मौत के हवाले कर रहे हैं। निःसंदेह वे इन सब पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनमें वास्तविक अपराध बोध है, और उनकी चिंताएं बहुत कम अनुष्ठानिक मुद्दों को लेकर हैं। श्लोक 11-26 में हम देखते हैं कि कैसे राजनीतिक औचित्य न्याय के विरुद्ध खेला जाता है। खैर, इतिहास के बारे में हम जो जानते हैं, यह उस पर फिट बैठता है कि यीशु को पिलातुस के अधीन मार डाला गया था। वास्तव में एनास 15:44 में वर्णित रोमन इतिहासकार टैसीटस, मेरा मानना है कि यह है। टैसीटस ने अपने इतिहास में कहा है कि यीशु को पोंटियस पिलातुस के अधीन क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह रोचक है। पोंटियस पिलाट ने रोम पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाला। रोमन संस्कृति में पोंटियस पिलाट का दर्जा भी बहुत ऊंचा नहीं था, परंतु वह यहूदिया में एक बदमाश था। जोसेफस और फिलो तथा अन्यत्र भी वह इसी प्रकार प्रकट होता है। यहूदी लोगों ने उसके, फिलो और जोसेफस के बारे में लिखा। हमारे पास उनके बारे में एक शिलालेख भी है, लेकिन रोम में पोंटियस पिलातुस का एकमात्र उल्लेख हमें यह मिलता है कि वह गवर्नर था जिसके अधीन नाजरेत के यीशु को मार डाला गया था। खैर, यह इतिहास के अनुकूल है। यह वही बैठता है जो हम जानते हैं। ईसाइयों ने रोमन फांसी या सूली पर चढ़ने के आरोप का आविष्कार नहीं किया होगा, जिसका तात्पर्य रोमन फांसी से था। उन्होंने निश्चित रूप से इस आरोप का आविष्कार नहीं किया होगा कि उसे मार डाला गया था, उसका शीर्षक, उसके सिर के ऊपर का चिन्ह। उन्होंने निश्चित रूप से यहूदियों के राजा का आविष्कार नहीं किया होगा, क्योंकि वह फिर से उच्च राजद्रोह का आरोप था। इसी के लिए उसे फांसी दी गई थी, इसी के लिए उसे फांसी देने के लिए सौंपा गया था। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण कर रहे हैं जिसे देशद्रोही राजा माना जाता है, तो आप स्वयं सम्राट के विरुद्ध देशद्रोह के दोषी हैं। इसके बावजूद रोम ने वास्तव में ईसाइयों पर हर समय सख्ती नहीं बरती, क्योंकि जहां तक रोमियों का सवाल था, उन्होंने कहा कि यीशु मर गया था। लेकिन यह उस तरह की बात नहीं थी जिसे आप बनाना चाहेंगे। यह बिल्कुल आत्मघाती था। और जैसा कि आप उस समय सामान्य परीक्षण सेटिंग में उम्मीद करते थे, आरोप लगाने वाला पहले बोलता है, फिर राज्यपाल उस व्यक्ति से सवाल करता है जिसने आरोप लगाया है, और राज्यपाल की भी एक सहमति होगी। उसके पास अपने सलाहकार होंगे, मुट्ठी भर सलाहकार। प्रांतों में रोम के पास आवश्यकता से अधिक कर्मचारी तो नहीं थे, परंतु उसके पास कुछ सलाहकार अवश्य होते थे। इस समय उसे वास्तव में उन पर बहुत अधिक निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी, हालांकि उनकी पत्नी थी जो उन्हें अलग तरीके से सलाह दे रही थी। याद रखें, उसने एक सपना देखा था जैसे पहले जादूगर ने सपना देखा था। भगवान स्वप्न में बोल रहे थे। क्या पिलातुस यहां उसी चरित्र के अनुरूप कार्य करता है जैसा हम उसके बारे में जानते हैं? मैंने पहले कहा था कि जोसेफस और फिलो उसे एक बदमाश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह एक बदमाश था, लेकिन कई बदमाशों की तरह दूसरी दिशा से बल का सामना करने पर वह कायर था। पिलातुस को लोगों को मनमर्जी से मार डालने के लिए जाना जाता है, लेकिन पिलातुस शायद सेजेनस पर निर्भर था। सेजेनस रोम में प्रेटोरियन प्रीफेक्ट था। उसे सम्राट का पूरा भरोसा था, सम्राट टिबेरियस का पूरा भरोसा था। सम्राट टिबेरियस व्याकुल था। उसके पास पागल होने के कुछ कारण थे। उनके प्यारे बेटे की हत्या कर दी गई थी, लेकिन सेजेनस ने टिबेरियस को व्याकुल बनाए रखा। तो टिबेरियस कैप्री द्वीप पर था, जबकि प्रेटोरियन प्रीफेक्ट सेजेनस मूल रूप से उसके लिए रोम चलाता था। उनके पास मुखबिरों का एक तंत्र था। उसने लोगों को मरवाया था। पिलातुस संभवतः सेजेनस के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, और पिलातुस को संभवतः वर्ष 31 के आसपास सेजेनस के पतन तक बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता नहीं थी, जो संभवतः इस दृश्य के बाद की बात है। परंतु पिलातुस भी केवल अश्वारोही था। वह सीनेट वर्ग का नहीं था। वह उससे एक वर्ग नीचे था, शूरवीर वर्ग। इसलिए अधिकांश राज्यपालों की तुलना में उनकी सामाजिक स्थिति कम थी। यदि उस पर आरोप लगाया गया और रोम में उसका समर्थन करने वाला कोई नहीं था, तो वह राजनीतिक रूप से असुरक्षित था। अब हम पिलातुस के बारे में जो देखते हैं, वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पहले उल्लेख किया था। जब वह रोमन मानकों को लाया था, वह बल का प्रदर्शन करना चाहता था। वह अपनी ताकत दिखाना चाहता था। वह चाहता था कि यरूशलेम वासी उसकी इच्छा के अधीन रहें। लेकिन जब उन्होंने कहा, तुम हम सबको मार सकते हो, तो यह बहुत ज्यादा था। वह जानता था कि वह इससे बच नहीं सकता। उन्होंने उसे वापस नीचे कर दिया। उसने कुछ अन्य काम भी किए, जैसे एक जलसेतु के भुगतान के लिए मंदिर के खजाने से धन जब्त करना और अन्य तरीकों से ऐसे काम किए जिससे लोग उसे निंदनीय मानने लगे। लेकिन पीलातुस को कभी कभी यहूदियों द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता था, और हमने इसके बारे में जोसेफस और अन्य जगहों पर पढ़ा। इसलिए पीलातुस थोड़ा प्रतिरोध करता है, लेकिन वास्तव में उतना नहीं, क्योंकि हार मान लेना राजनीतिक रूप से अधिक समीचीन है। लेकिन वह स्थानीय नेताओं का मजाक उड़ाने के मूड में भी नहीं है। वह चरित्र में बहुत अच्छा अभिनय करता है। रोमन कानून के तहत एक प्रतिवादी जिसने अपना बचाव करने से इनकार कर दिया, उसकी निंदा की जानी थी। और इसलिए पीलातुस कहता है, आपके पास अपने बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। यीशु ने उसे अधिक उत्तर देने से इनकार कर दिया। प्राचीन साहित्य में भीड़ आमतौर पर अपने नेताओं से आसानी से प्रभावित हो जाती थी। कुछ ऐसे लोग थे जिनका वे आदर करते थे, और यह भीड़ आसानी से अपने नेताओं के बहकावे में आ गई। महायाजकों ने कहा, नहीं, इस मनुष्य को नहीं बरअब्बा को मांगो। तो पीलातुस शायद उम्मीद कर रहा था कि भीड़ उसके लिए मामला सुलझा लेगी, कि उसे इस आदमी की निंदा नहीं करनी पड़ेगी। वह भीड़ को एक विकल्प देगा, एक तरह से मुख्य पुजारियों के सिर के ऊपर से गुजरें। परंतु भीड़ वही करने लगी जो महायाजक चाहते थे। मूल रूप से शायद ये गैलीलियन तीर्थयात्रियों के बजाय ज्यादातर यरूशलेम वासी थे, जो शायद नहीं जानते थे कि क्या हो रहा था। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, हमारे पास पीलातुस के बारे में एक शिलालेख है। पीलातुस ने तब यीशु को और रोमनों को सौंप दिया, और फिर ये सीरियाई सहायक हो सकते थे, लेकिन रोमन, जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने रोम के लिए काम किया। अत रोम के इन सैनिकों ने यीशु पर अत्याचार किए। पीलातुस ने संभवतः क्रूसेम में इबिस जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, संभवतः लैटिन शब्द। राज्यपाल इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, आपको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यीशु को भीड़ की इच्छा के अधीन कर दिया। सिपाहियों ने उसे उतार लिया और यीशु को कोड़े मारे गए। जैसा कि हमने पहले बताया, कभी कभी कोड़े मारने के दौरान लोगों की हड्डियां नंगी हो जाती थीं। कभी कभी लोग कोड़े से ही लहूलुहान होकर मर जाते थे। वे कोड़े से मारे गए, हालांकि वे क्रूस के लिए यीशु को सुरक्षित रखना चाहते थे। जिस तरह से रोमन लोगों को मार डालते थे, कैदियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, वह आम बात थी। ऐसा दुनिया के कई हिस्सों में हुआ है, आज भी कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और कुछ जगहों पर इसकी चर्चा नहीं होती। मुझे संदेह है कि यह कुछ जेलों में भी हुआ है, यहां तक कि कुछ देशों में भी, जहां वे कहते हैं कि वे इसके खिलाफ हैं। कभी कभी ऐसा व्यक्तिगत कैदियों के साथ होता है, कई बार ऐसा दूसरे कैदियों के साथ भी होता है, लेकिन कैदियों के साथ दुर्व्यवहार आम बात थी, और इस मामले में वे उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में पहले एक यहूदी राजा का मजाक उड़ाया था। कुछ लोग उसे दिखावटी राजा कहकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन कैदियों के साथ सीधे तौर पर दुर्व्यवहार करने के मामले में वे यहां ऐसा करते हैं। एवे सीजर, जय सीजर, एक सामान्य सलामी थी। खैर, जय हो यहूदियों के राजा। अब ये लोग शायद यहूदी विरोधी हैं। सीरियाई सहायकों के बीच यह बहुत आम बात थी। यह रोमनों के बीच भी काफी आम था, हालांकि कुछ यहूदी समर्थक रोमन भी थे और कुछ यहूदी समर्थक सीरियाई भी थे। परंतु वह कहता है, वे कहते हैं, जय हो यहूदियों के राजा। और फिर वे उसे एक राजदंड देते हैं, शायद बांस की बेंट जिसका इस्तेमाल सैन्य कोड़े मारने के लिए किया जाता है। और फिर उन्होंने उससे उसकी पिटाई की संभवतः एक एकैंथस झाड़ी। इनका उपयोग कांटों के लिए किया जाता है। हो सकता है कि यह कुछ और रहा हो, लेकिन संभवतः उनका मतलब हेलेनिस्टिक जागीरदार राजकुमारों के मुकुट की नकल में उसके सिर से अंदर की ओर इशारा करने के बजाय बाहर की ओर इशारा करना था। हालांकि जब आप एक कंटीली झाड़ी से कुछ बुन रहे होते हैं, भले ही आप जिस चीज की परवाह करते हैं वह बाहर की ओर इशारा कर रही हो, वे सभी एक ही दिशा में इशारा नहीं करते हैं। और खोपड़ी के घावों से अत्यधिक खून बहने लगता है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि यीशु के माथे से बहुत तेज खून बह रहा था। उन्होंने संभवतः एक फीके सैनिक के लबादे को बैंगनी शाही वस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया। सुसमाचारों में से एक बैंगनी कहता है, सुसमाचारों में से एक लाल कहता है। लेकिन अगर आप इस्तेमाल किए गए ग्रीक शब्दों की शब्दार्थ सीमा को देखें तो ये रंग वास्तव में ओवरलैप होते हैं, बैंगनी लाल या लाल बैंगनी, ये दोनों एक ही रेंज में हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में आपने क्लोरोसिपोस के बारे में पढ़ा, जिसका अनुवाद हम हरे घोड़े के रूप में कर सकते हैं, लेकिन हरे का मतलब पीला भी हो सकता है। शब्दों की सिमेंटिक रेंज अंग्रेजी की सिमेंटिक रेंज के बिल्कुल समान नहीं है। जब आप अनुवाद करते हैं तो रंग शब्दों की सीमा अक्सर अलग अलग भाषाओं में भिन्न होती है। इस मामले में हम ग्रीक शब्दों की शब्दार्थ सीमा के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन यहां विडंबना है। वे उसे यहूदियों का राजा कहकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वास्तव में वह यहूदियों का राजा है और वास्तव में वह ब्रह्मांड का असली राजा है, और यहां वे राजा कहकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब लोग और सैंडेड्रिन एक झूठे भविष्यवक्ता के रूप में यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, तो पत्रस द्वारा 3 बार उसका इनकार करने के बारे में यीशु की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। कोड़े केवल 39 कोड़े लगेंगे। रोमन लोग फ्लैगेलम का प्रयोग करते थे। इसमें चमड़े के चाबुक की नोकों में हड्डी या कांच के टुकड़े या अन्य नुकीली चीजें बुनी गई होंगी। सिपाही निंदा करने वाले व्यक्ति को तब तक जोर से पीटता जब तक वह ऐसा करते करते थक नहीं जाता, और दया दिखाने के लिए कोई सीमा नहीं थी, कोई 39 कोड़े नहीं थे। और फिर कभी कभी लोग इन पिटाई से मर जाते थे। यीशु को क्रूस को फांसी के स्थान तक ले जाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, कोई आम तौर पर क्रॉस के क्षैतिज बीम पेटीबुलम को ले जाता है, जैसा कि हम अक्सर तस्वीरों में नहीं देखते हैं, आप जानते हैं, पूरी चीज अक्सर सीधा दाव निष्पादन के स्थल पर पहले से ही होता है, प्लस सीधा दाव। कभी कभी लोगों के पास पर्याप्त अन्य चीजें उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें पेड़ों पर कीलों से भी ठोक दिया जाता था, लेकिन इस पुन प्रयोज्य काठ के लिए व्यक्ति को फांसी की जगह पर ले जाया जा सकता था और फिर उन्हें कीलों से ठोका जा सकता था या उन्हें बस रस्सी से बांधा जा सकता था। यीशु के मामले में उसे कीलों से ठोक दिया गया था, और इसका उल्लेख कुलुस्सियों में भी किया गया है। क्षैतिज बीम पर कीलों से ठोका गया, जो कि दाव पर लगाया जाएगा। यीशु ने क्रूस उठाना समाप्त नहीं किया। अब क्या उसने क्रूस को उठाना शुरू कर दिया जैसा कि जॉन के सुसमाचार में कहा गया है? यह समझ में आता है, क्योंकि आम तौर पर दोषी व्यक्ति को अपना स्वयं का क्रॉस ले जाना होता है। हालांकि सिनोप्टिक गॉस्पेल मैथ्यू, मार्क और ल्यूक सभी में उल्लेख है कि रोमनों को ऐसा करने के लिए एक दर्शक का मसौदा तैयार करना था। खैर, मुझे लगता है कि एक कारण है कि वे इस पर जोर देना चाहते हैं, क्योंकि इससे बात स्पष्ट हो जाती है। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। जब समय आया तो उनके शिष्य कहीं नहीं मिले और रोनों को उनके स्थान पर एक दर्शक को बुलाना पड़ा। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 18 है, मैथ्यू 26:27।